ठीक है। अब ये है कि इसमें सबसे पहले जो, जैसे मैंने आपको बताया, हजरत अब्बास ने जो सूद के वो किया था ना, उन्होंने तो लेना था लोगों से, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कर दिया। अब क्या होगा, हर एक बंदे को उसकी असल रकम मिलेगी, जो सूद की रकम है वो नहीं मिलेगी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने कितना प्यारा पहले फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब ये पता है ना कि ये चीज छोड़नी बहुत मुश्किल है, तो पहले लोगों को तैयार किया गया। डरने का मतलब ये नहीं है कि बस झुझरी दे दी तो हम डर गए, आए बड़ा डर लगता है, नहीं। एक अपने जैसे इंसान का, ट्रैफिक पुलिस का डर तो ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी की ब्रेकें लग जाती हैं। तो अल्लाह जो तमाम जहानों का मालिक है, हम कहें कि हमें उससे डर लगता है और बस इतनी झुरझुरी आ जाए और हमारी ब्रेक ना लगे, क्या ये वाकई डर होगा? हम अपनी गलत कारियां ना छोड़ें, क्या ये वाकई डर होगा? एक टीचर के डंडे से डर के हम पूरा सबक याद करके जाएं और अल्लाह का डर हमें कुछ भी ना करवाए, हमारा अमल ही सीधा ना हो, तो क्या ये डर होगा? तो डर तो वो है जो इंसान को इतना फिक्रमंद कर दे, इतना परेशान कर दे कि उसकी रातों की नींद उड़ जाए और वो इस गुनाह को आखिरकार छोड़ दे, वो है डर असल में। तो अल्लाह ताला ने अपना डर दिलाया पहले, ये फरमाया अल्लाह से डर जाओ और छोड़ दो जो बाकी रह गया रिबा में से। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर वाकई तुम्हारे अंदर ईमान है, अगर तुम अपने आप को जो कहते हो ना, हम मोमिन हैं, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, फिर तो तुमको कोई बहस ही नहीं करनी चाहिए, फिर तो कोई बहस की नहीं है गुंजाइश है ना, फिर जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया वो तो दे दिया। तो अब तुम्हें अल्लाह से डर के बाकी तमाम सूद छोड़ देना चाहिए। फइल्लम तफालू, और ये इतनी ज्यादा खौफ दिलाने वाली आयत है, इसके बाद तो फिर किसी की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि वो कुछ और करे। फइल्लम तफालू, फिर अगर ना तुम करो, फअदनू, तो खबरदार हो जाओ, सुन लो, ऐलान सुन लो, किस चीज का? बेहर बिन मिन अल्लाही व रसूली, जंग के लिए अल्लाह से और उसके रसूल से। अगर तुम ना करो ये काम, अगर तुम फिर भी नहीं छोड़ते हो, इस हुक्म में देखें कितना जलाल है, कितना रोब है। ये किसी आम आदमी से जंग की बात नहीं है, हमें तो कहीं पता चल जाए ना किसी मुल्क में ही जंग होने का सवाल, कि यहां पे कोई जंग का खतरा भी है, तो हम कैसे डर के वहां से भाग जाएं? लोग मूव हो जाते हैं, स्टॉक मार्केटें गिर जाती हैं, हालांकि इंसानों के इंसानों से अभी जंग नहीं हुई होती, अभी सिर्फ खतरा होता है। और ये तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिसका ईमान होना वो सोच भी नहीं सकता, अल्लाह और उसके रसूल से जंग, वो रसूल जिनके भरोसे पे बैठे हुए कि इन्होंने शिफात करानी है, और वो अल्लाह जो रब्बे कायनात है, उसके मुकाबले में क्या कोई आ सकता? इस जंग में सोचे एक तरफ कौन है, ये हकीर कमजोर सा इंसान, और दूसरी तरफ रब, जिसके हम हर हर लम्हा मोहताज हैं, और जिसके इज़्ज़त के बगैर इंसान एक सांस तक भी नहीं, ना अंदर लेके जा सकता ना बाहर ला सकता। और तुम समझते हो कि तुम उसका मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारी कहाँ हिम्मत है सोच भी नहीं सकते? और वो अल्लाह जिससे हमें हर पल कोई हाजत है, कोई जरूरत है, और उसके आगे हम हाथ उठाते हैं, अगर उसी ने जंग का ऐलान कर दिया, हम किसके पास जाएं? इसीलिए तो फिर दुआएं नहीं कबूल होती। उसने तो जंग का ऐलान किया हुआ है, उसी से आप मांग रहे हैं। एक तरफ ये हाल होता है, कुरान ऐलान कर रहा होता है जंग का, दूसरी तरफ हम अल्लाह रसूल के कसीदे पढ़ रहे होते हैं, नाते पढ़ रहे होते हैं, मिलाद हो रहे हैं, अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिशें हो रही हैं, कुरान खानियां करा रहे हैं, और ये पता नहीं है जो कुरान पढ़ रहे हो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जंग है तुमसे, और लोग मुबारकबादें दे रहे होते हैं आपने, वाह भाई वाह, क्या कारोबार, क्या इनकी सज धज है, और क्या इनके घर हैं, और क्या इनकी शानो शौकत है। किसी की सूद पे ली हुई चीज को देखकर हम कैसे खुश होते हैं ना, ये नहीं सोचते कि इसने अल्लाह रसूल से जंग ले ली है। एक तरफ अल्लाह अपने हथियार लेके आ गया, और उसको तो ना किसी हथियारों की जरूरत, ना फौजों की, फौज भेजने की भी जरूरत नहीं, ना आसमान से बिजलियां गिराने की, कभी एक मच्छर ही काफी हो जाता है, और कभी छोटे छोटे परिंदे चोंचों में पत्थर लेके बुलेट्स का काम देते हैं, कभी हवाएं हैं जो इंसानों को सर उनके धड़ से अलग कर देती हैं, कभी सिर्फ एक चीख होती है जो कलेजों को फाड़ देती है। तो उसको तो ना किसी फौज की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत। अब ये ऐसी जो सजा है या ऐसी जो बात है ना, किसी और जुर्म के बारे में नहीं आई, ना कत्ल के, ना जिना के, ना चोरी के, ना डाके के, किसी और में नहीं आई कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लेने के लिए तैयार हो जाओ, और इस मामले के अंदर आई है। वह इन तुबतुम, और अगर तुम तौबा कर लो, मेरा रब कितना मेहरबान है कि फिर भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, कि जब कोई बंदा ये सुनेगा तो यकीनन उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं 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 मैं तो नहीं जंग ले सकती, तो तुम डर जाओगे, फिर डर के तुम्हारा दिल चाहेगा तौबा करने का, तो फिर भी अल्लाह का दरवाजा खुला है, तौबा कर लो। और तौबा कैसे होगी, फौरी सूदी लेन देन छोड़ दो, पिछताओ उस वक्त के ऊपर जब तुमने ये किया, और फिर तुम्हारे लिए क्या है, फलकुम रुऊसु अमवालिकुम, फिर तुम्हारे लिए क्या है, जो तुम्हारे मालों का असल है, यानी जो तुम्हारी जो रकम है, जो तुम्हारी जो जो कर्ज के लिए तुमने दी है, जो तुम्हारी इनिशियल अमाउंट थी ना, वो बस तुम्हें मिलेगी, असल तुम्हारी रकम, उसके अलावा सूद नहीं मिलेगा। ला तज़लिमुना, ना तुम जुल्म करोगे, और वला तुज़लमू, ना जुल्म किए जाओगे। तुम जुल्म कैसे, जुल्म करना क्या है, सूद लेना जुल्म है, और तुम पर जुल्म कैसे किया जाएगा, कि अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि नहीं जी तुम्हारी असल रकम भी नहीं तुमने ले ली, बस अब तुम जाओ छुट्टी करो और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नहीं, जो तुम्हारी असल रकम है वो तो तुम्हें दी जाएगी, वो तो तुम्हारा हक है, ठीक है, वो तुम ले सकते हो, ना जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए, ठीक है, ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ, ठीक है, तो तुम अपनी असल रकम ले सकते हो। देखिए इस्लाम में ये नहीं है, तौबा कर लो इसके बाद तुम्हें ये सजा मिलेगी कि असल रकम भी तुम्हें नहीं दी जाएगी, ये नहीं है, अब बस तुम ये ले लो, लेकिन सूद को तुम छोड़ दोगे, सूद नहीं लोगे। वह इन कान ज़ू उसरतिन, और अगर है कोई तंगी वाला, फ़नज़िरतुन इला मैसरा, तो मोहलत देना है आसानी तक। अब क्या है, देखिए अब जब असल रकम लेने का टाइम आए तो इंसान कहता है, जब सूद तो मिलना नहीं है, जब ये पता चल गया ना कि सूद नहीं मिलना, तो तुमने साल भर बाद मुझे देना था, नहीं मुझे तो अभी मेरे पैसे निकालो, जब यहां से कोई फायदा ही नहीं, क्या फायदा इसको देने का, मैं उसकी बजाय कहीं और इन्वेस्ट कर दूं, तो इंसान कहता है फौरन दो। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अगर वो तंगी वाला है, कौन है तंगी वाला, किसको कहा गया, यानी जिसने कर्ज लिया है, अगर उसके पास तंगी है, फनादिरतुन इला मैसरा, तो मोहलत देना है आसानी तक, उसके हाथ खुलने तक उसको मोहलत दो, यानी हाथ खुलने तक का मतलब क्या है, जब तक उसके पास पैसे नहीं आ जाते उस वक्त तक तुम उसको मोहलत दे दो। देखें कितना प्यारा माशरा हो जाए जिसमें लोग इतनी हमदर्दी रखने वाले हों कि जो है ना, कोई बात नहीं, अगर अभी तुम्हारे पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम बाद में ले लेंगे, तुम्हारे पास जब आसानी हो जाए तब दे देना, कितना रहम का, कितनी इंसानी हमदर्दी का मुआशरा हो जाए वो। ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर मकरूज के पास नहीं है वो सत, तो बजाय उसको तंग करने के, उसका पीछा करने के, उसके दर पे हो जाने के, नहीं तुम उसको टाइम दो, मोहलत दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात महबूब हो कि अल्लाह उसे कयामत की दिन तंगियों से निजात दे, तो उसे चाहिए कि तंग दस्त को मोहलत दे या माफ कर दे। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको कयामत के दिन सख्तियों से निजात दे, उस दिन की सख्ती से, तो यहाँ पे वो जिसके ऊपर सख्त टाइम आया हुआ इस वक्त, उसने कर्ज वापस करना है, उसको मोहलत दे दे। हमारे यहाँ क्या होता है, आपको पता है कितने सारे कत्ल इस वजह से होते हैं कि वो कर्ज लेने गया, वो कर्ज उस वक्त से उसे मांग रहा था, वापस दो, वो दे ही नहीं रहा था। कभी लोग झूठ बोलते हैं, कभी लोग वादा खिलाफी, बस अगले महीने दे दूंगा, उसे अगले दे दूंगा, उसे अगले दिन, करते 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 ये हाल आ जाता है कि वो एक दूसरे को उठा के कत्ल ही कर देता। और इसी तरह आप ये देखें कि बैंक वाले, ये जो बैंकिंग का निजाम है, जो सूदी निजाम है, वो कहाँ से किसी को मोहलत देंगे? वो तो मोहलत देते ही नहीं, उनके आगे थोड़ी आते हैं कि वो कहेंगे हाँ जी हम थोड़ा सा अजर कमा लें। नहीं, ये नहीं है कि बैंकिंग जो है ना इस्लामिक नहीं हो सकती, इस्लामिक बैंकिंग भी हो सकती है। उसका क्या तरीका है कि जब बैंक जो है ना, वो किसी लोगों के पैसे इतने सारे उनके पास पड़े होते हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करें पैसों को, और जो प्रॉफिट हो उसमें अपना हिस्सा रख के, जितना उन्होंने काम किया उस, वो अपना एक यानी जो जायज मुनाफा है वो रख के बाकी लोगों को दें, और अगर नुकसान होता है तो उसमें भी फिर लोग जाहिर है नुकसान उठाएंगे, तब तो सही है, तब तो तिजारत है। लेकिन अगर वो अपने पास फिक्स रख लेते हैं, और बैंक करता क्या है, वो लोगों को आगे कर्जे देता जाता है सूद के, तो वो फिर आराम हो गया। तो यहाँ पे क्या फरमाया कि तुम लोगों को ऐसे ना करो कि उनको तंग करने लगो, उनके पीछे पड़ने लगो, तुम उनको मोहलत दो। और अगर वह अंत सद्दकू खैर लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम सदका कर दो, सदका करने का मतलब क्या है, माफ कर दो उसको, कहो कि मैंने तुम्हारे पर सदका कर दिया, चलो मैंने छोड़ा, वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें पता हो। हालांकि बजाहिर तो इंसान का नुकसान हो रहा है ना कि हाय सूद तो गया मेरा, तो असल माल भी गया, मगर कुरान फरमाता है ये बेहतर है। क्यों बेहतर है? दो वजह है इसकी। एक तो ये वजह है कि इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के बाद तुम वो वक्त देखोगे जब ये इतना सा माल जो तुमने छोड़ा है ना, इसकी वजह से तुम्हारी आखरत की सख्तियां अल्लाह ताला दूर कर देगा, या जन्नत की नेमतें तुम्हें इसके बदले में मिलेंगी, तो तुम कहोगे ये तो बेहतर है, और दुनिया में भी तुम्हें बेहतरी नजर आएगी, इसलिए कि जो तुम्हारे पास माल है अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। और बरकत से फिर मैंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है बरकत की वजह से माल बढ़ जाए कि अच्छा मेरे पास 1,000 था तो अब मेरे पास 2,000 हो गया, और अगर 2,000 नहीं हुआ तो आप तो कह रहे थे कि बरकत होगी, ये तो कुछ भी नहीं बरकत होगी, ये तो 1,000 का 1,000 ही पड़ा हुआ। नहीं, बरकत ये नहीं होती कि क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, बरकत जो होती है ना, कभी थोड़े माल से भी आपके इतने काम हो जाते हैं कि वो है बरकत, और हराम माल से कितनी स्पेंड करते हो फिर भी नहीं काम हो पाता, ठीक है। तो जिस माल में बेबरकती होती है उसका हाल क्या होता है, जिस मकसद के लिए खर्च करते हैं ना वो मकसद नहीं मिलता, या फिर बेकार चीजों में माल खर्च हो जाता है। तो इसलिए समझे बरकत की बात को। तो अगर तुम मोहलत देते हो, आसानी करते हो, तो उसके ऊपर भी इतना बड़ा अजर है कि अल्लाह ताला आखरत की आसानियां कर देता तुम्हारी, और अगर सदका कर देते हो तो फिर तो अजर ही अजर है। हदीस में है कि जो शख्स कयामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श का साया चाहता है ना, वो या तो ऐसे तंगी वाले शख्स को मोहलत दे दे या माफ कर दे। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस में मुसनद अहमद की, कि जो शख्स मुफलिस आदमी पर अपना कर्ज वसूल करने में नरमी करता है और उसको ढील देता है, तो जितने दिन वो कर्ज की रकम अदा ना कर सके उतने दिनों तक हर दिन उतनी रकम खैरात करने का सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी को कर्ज दिया 1,000 डॉलर, अब उसको कहा 5 तारीख को देना, वो 5 तारीख को उसके पास नहीं थे वापस करने के लिए पैसे, अब जितने दिन गुजरते जाएंगे, हर दिन मुझे $5,000 खर्च कर सदका करने का अजर मिलता रहेगा, सुभान अल्लाह, हर रोज उतनी रकम खैरात करने का। और एक और रिवायत में आपने फरमाया हर दिन उससे दुगनी रकम करके सदका करने का सवाब मिलेगा। ये सुन के हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूल्ला पहले तो आपने हर दिन उसके बराबर सवाब करने का फरमाया था, आज आप दो मिसल फरमाते हैं। फरमाया हाँ, जब तक मियाद खत्म नहीं हुई मिसल का सवाब है, और मियाद गुजरने के बाद दो मिसल का, यानी फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को उसने वापस करना था, 5 को नहीं किया, उसको मोहलत दे दी मैंने कि भाई 10 को आप कर देना। अब 10 तारीख तक जितनी मोहलत दी है ना, तो फरमाया ना फनादिरतुन इला मैसरा, आसानी तक मोहलत दे दो। उसने कहा मुझे, मैं 5 को नहीं दे सकती, मैं 10 तारीख को दे दूंगी। अब ये जो 5 दिन गुजरते हैं, हर दिन $5,000 सदका करने का अजर मिला, अब 10 तारीख भी गुजर गई, अब 10 तारीख को भी नहीं वो दे सका, तो अब क्या है, 5 नहीं $10,000 सदका करने का हर दिन अजर मिलेगा, डबल का मिलेगा, तो इसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है। देखो इस्लाम कितना प्यारा मुआशरा बना देता है, जिसमें लोग कितने एक दूसरे के साथ आसानी करते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस में कि ये मुस्नद अहमद में नहीं, शायद ये मुझे नहीं पता कि कौन सी हदीस की किताब में, नहीं मुस्लिम में है, मुस्लिम में अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कर्ज एक शख्स के जिम्मे था। वो तकाजा करने को आते थे लेकिन ये छुप रहते थे और नहीं मिलते थे। एक दिन वो आए तकाजा करने के लिए, कर्ज मांगने लगे कि घर से एक बच्चा निकला, आपने उससे पूछा, उसने कहा हाँ ये घर में मौजूद है, खाना खा रहे हैं। अब अबू कतादा ने ऊंची आवाज से इन्हें पुकारा और फरमाया मुझे पता है कि तुम घर में मौजूद हो, आओ बाहर आओ, जवाब दो। वो बेचारे बाहर निकले, आपने कहा क्यों छुप रहे हो, कहा हजरत बात यह है कि मैं मुफलिस हूं, इस वक्त मेरे पास रकम नहीं है, इस वजह से शर्मिंदगी की वजह से मैं आपसे नहीं मिलता। आपने कहा कसम खाओ, उसने कसम खाई, आप रोए और फरमाने लगे मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये अब हदीस मुस्लिम में है, कि जो शख्स नादार कर्जदार को ढील दे या अपना कर्जा माफ कर दे तो कयामत के दिन अल्लाह के अर्श तले होगा, अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। इसी तरह एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदा अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह ताला उसे पूछेंगे बता मेरे लिए तू क्या नेकी लेके आया, वो कहेगा या अल्लाह एक जर्रे के बराबर भी कोई ऐसी नेकी मुझसे नहीं हुई जो मैं आपकी आगे पेश करूं, जिसकी जजा मैं मांग सकूं। अल्लाह ताला इससे फिर पूछेगा, वो फिर यही जवाब देगा, फिर पूछेगा वो फिर यही जवाब देगा। अल्लाह ताला एक छोटी सी बात, अल्लाह एक छोटी सी बात मुझे अलबत्ता याद पड़ती है कि तूने अपने फजल से मुझे कुछ माल भी दे रखा था, मैं तिजारत पेशा शख्स था, लोग उधार वगैरह ले जाया करते थे, मैं अगर देखता कि ये गरीब आदमी है और वादे के मुताबिक कर्ज अदा नहीं कर सकता तो मैं इसको कुछ और मुद्दत की मोहलत दे देता था, और जो अयालदारों पे सख्ती नहीं करता था, जो अयालदार होते ना बहुत फैमिली वाले कुंबे वाले बाल बच्चे बहुत हैं तो उन पे सख्ती नहीं करता था, अगर ज्यादा तंगी वाला किसी को पाता, यानी किसी के बहुत ही हालात खराब हैं, तो माफ भी कर देता था। अल्लाह ताला फरमाएगा फिर मैं तुझ पे आसानी ना करूं, मैं तो सबसे ज्यादा आसानी करने वाला हूं, जा मैंने तुझे बख्शा, जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, इस बात की वजह से अल्लाह ताला ने उसको माफ किया कि तू लोगों के ऊपर आसानी करता था, उनकी तंगी में उनको मोहलत देता था, वो कर्ज नहीं अदा कर पाते थे, आपको पता है कि इसके हालात है ही नहीं, ये दे ही नहीं सकता, तो फिर क्या है माफ ही कर दे, और आपको नहीं पता कि उसे माफ करने में कितना बड़ा अजर आपको मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद आते हुए जमीन की तरफ इशारा करके फरमाया जो शख्स किसी नादार पे आसानी कर दे या उसको माफ कर दे अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की गर्मी से बचा लेगा। सुनो जन्नत के काम मुशक्कत वाले हैं और ख्वाहिश के खिलाफ हैं, दिल नहीं ना चाहता माफ करने का, लेकिन जन्नत के काम हैं ही ऐसे जो मुशक्कत वाले और जिसमें दिल ना चाहे, और जहन्नुम के काम आसानी वाले हैं और ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक हैं। नेक बख्त वो लोग हैं जो फितनों से बच जाएं। इसी तरह तबरानी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी मुफलिस शख्स पर रहम करे और रहम करके अपने कर्ज की वसूली में इस पे सख्ती ना करे, अल्लाह भी इसके गुनाहों पर इसको नहीं पकड़ता यहां तक कि वो तौबा कर ले। इसी तरह एक और जगह है मुसनद अहमद में, जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी दुआएं कबूल की जाएं और उसकी तकलीफ और मुसीबत दूर हो जाए, उसे चाहिए कि तंगी करने वालों तंगी वाले लोगों पर कुशादगी करे। यानी तंगी वाले कौन होते हैं? जिनका हाथ तंग है, नहीं दे सकते। मुस्तदरक हाकिम में, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले गाजी की मदद करे, या कर्जदार जो गरीब है उसकी मदद करे, या गुलाम जिसने लिख कर दिया उतनी रकम दे दूं तो आजाद हूं इसकी मदद करे, अल्लाह ताला उसे उस दिन साया देगा जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। तो ये मैंने कितनी सारी अहादीस आपको बताई। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने सारी अहादीस को ना सिर्फ उनका रिजल्ट बताना है, कि एक लाइन में लिखें कि जो शख्स किसी तंगी वाले को मोहलत देता है या उसको माफ कर देता है, उसके लिए क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं।